ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोचि संविदधतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम् ताम्। माधुर्य कादंबिनी हम लोगों ने माधुर्य कादंबिनी से अनिश्चिता भक्ति की बात बतलाई। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कह रहे हैं जिसमें निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती, बुद्धि की निश्चलता, चित्त इधर उधर नहीं जाता। अभी भजन करते समय में मन कहाँ जाता है? अन्ही करो तो मन कहाँ जाएगा? इधर उधर दौड़ेगा। तो तब तक अनिश्चिता भक्ति है। जब सब प्रकार से मन निश्चित हो जाए तो वो निश्चिता भक्ति कहलाती है। पहले बतलाया प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी देखो अपने अंदर में झांको, देखो यू शुड रियलाइज योर सेल्फ कि अनर्थ के रहते हुए जब तक अनर्थ है किसी प्रकार का लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय और असस्वा ये पांच प्रकार की के अनर्थ रहते हैं। अपराध सेवापराध दूर होने पर भी ये किंतु रहते हैं और बुद्धि भजन में निश्चलता नहीं पाती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर डोलती है। जब तक ऐसा है तब तक भजन कैसे होगा? इसलिए मन को किसी भी बाहरी कामों में मत लगाओ, किसी भी बाहरी काम नहीं तो भजन में निश्चलता नहीं आएगी, नहीं होने फिर रुचि नहीं होगी, फिर आसक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा। लय विक्षेप आदि पांचों विघ्नों के अभाव को ही निष्ठा कहते हैं। जब ये सब नहीं रहते तो निष्ठा होती है। कीर्तन श्रवण और स्मरण, कीर्तन में तो जोर जोर करके कीर्तन करते हैं, नित्य करते हैं और जोर से बोलते हैं, इसलिए ऐसे समय में नींद नहीं आएगी और मन भी इधर उधर नहीं जाएगा जोर से कीर्तन करने से। और फिर श्रवण करते समय कुछ कुछ होगा, कीर्तन में नहीं होगा, किंतु जहां श्रवण का आरंभ किया तो कुछ झपकी आ जाएगी, नींद आएगी। और इस स्मरण के समय में जैसे मंत्र का हम स्मरण करते हैं गुरु प्रदत्त, तब तो सो जाएंगे, एक घंटा बाद उठेंगे। हमारे देवानंद गौड़िया मठ में मुकुंद महाराज थे, तो वचन करने गए और एक घंटा दरवाजा नहीं खुला, घंटा भी नहीं बजा, तो नृसिंह महाराज जी का जी क्या कर रहा है, दरवाजा खोल करके गए, देखा जैसे सो रहा है। ये सोना लय कहलाता है, उस समय लय बने यार ज्ञान नहीं रहता। कीर्तन श्रवण और स्मरण के समय में व्यवहारिक बातों का जो संपर्क है उसे विक्षेप करते हैं। श्रवण करते कीर्तन करते समय जरा कम होगा, श्रवण करते समय कुछ है, आप बैठे हैं, यू आर सिटिंग हियर एंड थिंकिंग योर हाउस, हाउ माय डॉटर इज देयर, हाउ इज देयर, हाउ माय डॉग इज देयर, ये सब विक्षेप हैं। लय दूसरा विक्षेप, विक्षेप माने चित्त में बीच में आ जाना प्रसंग। भजन करते समय में, श्रवण करते समय में और स्मरण करते समय में विशेष करके चित्त उधर उधर न जाए। लय और विक्षेप नहीं रहने पर भी श्रवण कीर्तन स्मरण में कभी कभी असमर्थता होना, ये अप्रतिपत्ति, नहीं होते हुए भी असमर्थ, अप्रतिपत्ति। श्रवण आदि के साधन काल में श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उसी समय में किसी कारण से क्रोध आया, लोभ एवं अभिमान का जो संस्कार है ये कषाय है, नहीं होना चाहिए। ये बतला रहे हैं कि भजन करते समय में इन चीजों को याद रखो। आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर एंड ट्राई टू बी केयरफुल फ्रॉम दीज थिंग्स। और विशेष सुख स्मरण कीर्तन और विशेष करके जब स्मरण करते हैं तो विषय सुख, कोई पैसा दे गया, कोई प्रतिष्ठा दे गया, वाह बड़ा मन में सुख होता है और भजन रह जाता है। इसको कहते हैं रसास्वाद, रस का स्वादन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। छोड़ो, निष्ठकी भक्ति के उत्पन्न होने पर रजोगुण और तमोगुण के भाव काम क्रोध लोभ आदि के द्वारा चित्त जब विद्ध न हो और सत्वगुण में स्थिरता हो जाए तो वो प्रसन्नता लाभ करता है, यही निष्ठिता भक्ति है। मूल श्लोक में जो चकार है किंच एतै अनाविद्धम इति उक्ते भाव पर्यंत तेषां स्थिरता प्याप, तो यहाँ पर जो च है समुच्चय बात, समुच्चयार्थ बात करने पर उस अवस्था में भी रजगुण और तमगुण के भावों का अस्तित्व समझा जाता है किंतु वो शांत रहते हैं, समय पर कभी वो निकल पड़ते हैं। इनके द्वारा चित्त अनाविद्ध या अछूता रहता है, इस बात से यह सिद्ध होता है जब तक भावावस्था नहीं होगी तब तक रज तम आदि भक्ति के बाधक न होकर अबाधक रूप में स्थित रहते हैं, किंतु जहां कहीं मिली सुजोग वहां पर ये प्रकट होते हैं। इसलिए भजन के समय में काम क्रोध लोभ न हो, विषयों का स्मरण करके उसमें रसास्वाद न हो, और जो कहे गए हैं खूब अच्छी तरह से देख सुन करके सावधानी से भजन करो, तो भजन में उन्नति होगी। चित्त जहां पर रहेगा उसी का चिंतन करेगा, इसलिए अपने मन को उन चीजों में मत लगाओ। विशेष करके ये जो निष्ठा जब अब दूर हो गई और निष्ठा निश्चल बुद्धि हो गई, ये भी दो प्रकार की है। अच्छा, यू कैन स्पीक देन।
Therefore, we can examine ourselves, take our own pulse. If the mind is running here and there during bhajan, is it a symptom of anisthita bhajan, unsteady devotion? Therefore, as long as five obstacles are present in the form of lying, vikshep, apratipati, apratipati, rasa, swad, and kosai, then the mind will be fixed in anisthita bhajan. Therefore, one should know what are these five obstacles and make endeavors to remove them. Because as long as our mind is contemplating external subject matter, then the mind will not be absorbed. If there's no absorption, there'll be no ruchi. If there's no ruchi, there'll be no ashakti. If there's no ashakti, then how bad bhakti will come. Therefore, the absence of these five obstacles, one can determine that that person is on the platform of nishtha. Those five obstacles are lie. Lie means sleep. Vikshep, distraction of the mind. Apratipati, despite the absence of sleep or distraction, one has no interest, with disinterest. Rasa swan, one contemplates enjoyment in the mind, and kosai. For no reason, in the middle of bhajan, one has anger or greed comes in the mind. Therefore, especially lying, sleep, comes in three gradations of severity. Therefore, in the platform, when one does kirtan, when one does very loud kirtan, the mind will not be distracted very easily, nor will sleep come. But as soon as one begins the process of bhakti called shravan, then the mind begins, some sleep begins to come. But most predominantly, when one begins the practice of smana, then definitely sleep will come. Guru Maharaj tells one story. There was one sannyasi, Mukunda. Anyway, one devotee. Mukunda, one brahmachari, he was performing archam in Sudevananda Gaudiya Math. And the door was closed for a long time. Then Puttapatma Sugamaj, which he, what's going on there? He opened the door. Not the body was?
Lord.
This is called Lord, or sleeping. Especially it's prominent in the stage of smaran. Therefore, one should avoid that. So, when we perform especially smaran, then the mind will be distracted. One will remember how my dog is there. Is anyone taking care of him? My children are there in the home. Therefore, especially in the time of smaran, the mind will be distracted. This is called vikshep. Of course, that vikshep can also be present when we perform kirtan or shravan, but it's not so prominent. But especially prominent in the stage of smaran, remembrance. Therefore, sometimes we see there is no sleep or no distraction, but still there is disinterest. This is called apratipati. Then we are doing some shravan or kirtan or shravan, and all of a sudden some anger comes. This is called kosai. for no reason it comes out of nowhere. Then the next one is called Rasa Swad, means tasting material enjoyment. When you get in Shravan Kirtan and Smaran, that time the mind thinks, oh yes, how much money I got then, how much name and fame I got. Then the mind rejoices. This is called Rasa Swad, enjoying material sense objects in the mind. This is not good. And finally, that's it, five. These are five obstacles. Therefore, on the appearance of Mr. Bhajan, what will happen then? The effects of Rajagun and Tamagun will be dissipated, and one will be situated in the platform of Sattvagun. So first we have to come to the platform of Sattvagun, then one can perform the Siddha Bhajan. Therefore, even under the stage of Baba Bhakti, there may be some touch of Tamagun or Rajagun, but even at that stage it will not disturb, but even something may be present up to then. Therefore, be very careful of all these things. If we carefully pull the mind away from external contemplation and control the six enemies of lust, greed and anger, etc., then fix the mind very nicely, then that person's bhajan becomes brilliant and his bhajan becomes successful, otherwise not.
Nishtha do prakar ki. Sakshat bhakti vartini. और तदनुकूल वर्तिनी। पहली वाली साक्षात भक्ति से श्रवण कीर्तन आदि नौ प्रकार की जो भक्ति है उस भक्ति में श्रवण में कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास सख्यात मनिवेदन या पंचधा भक्ति है साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति श्रद्धा है। इनमें जो निष्ठा है वो साक्षात वर्तिनी है और दूसरी भक्ति के जो अनुकूल गुण है भक्ति के होने के बाद में जो गुण उत्पन्न होते हैं उनमें निष्ठा होने से तद अनुकूल वर्तिनी। जैसे मान रहित होना, दूसरों को मान देना, सबके प्रति मित्रता, सौहार्द का भाव होना, समस्त जीवों में भगवान को अधिष्ठित जान करके उनके प्रति आदर या दया की भावना, इन गुणों में जिनकी निष्ठा होती है वो। किंतु इन गुणों के होने के बाद कुछ समय के बाद में ये साक्षात वाले में आ जाते हैं। साक्षात भक्ति अनेक प्रकार की है, 64 प्रकार की है। स्थूल दृष्टि से शरीर से अनुष्ठित होने के कारण वो कायिकी, वाचिकी और मानसिक। वाणी कायिकी वाणी के द्वारा अनुष्ठित होने से वाचिकी तथा मन के द्वारा अनुष्ठित होने से मानसिक। कायिकी कायिकी वाचिकी और मानसिक। पहले कायिकी भक्ति में निष्ठा होती है या वाचिकी या मानसी में, कोई क्रम नहीं है, कोई भी उदित होकर के पीछे दोनों उदित होंगी, क्योंकि किसी में शारीरिक बल अधिक होता है। किसी में शारीरिक बल होता है, एनिमल इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी बट मेंटली वेरी वीक एंड इट मे बी समवन लाइक मी वेरी लीन एंड थिन, नॉट स्ट्रॉन्ग बाय बॉडी बट बाय माइंड ही कैन कंकर होल वर्ल्ड। So, विलक्षण संस्कारों के कारण मनुष्य भगवान की भक्ति में निष्ठा विभिन्न रूपों में दिखती है। जिसका जैसा संस्कार है, पहले कायिकी होगा, किसी का मानसिक होगा, किसी का वाणी का होगा, इसकी कोई निश्चयता नहीं है। भक्ति अनुकूल वर्तनी निष्ठा कैसी होती है? शांत प्रकृति के शांत स्वभाव वाले भक्तों में मान शून्यता, मान की कोई इच्छा नहीं होगी। दूसरों को मान देगा, मित्रता, सबके प्रति मैत्री भाव और दया भाव, इन अनुकूल गुणों के प्रति निष्ठा होती है। जिसको साक्षात क्या है, साक्षात वर्तनी भक्ति है, उसमें ये गुण रहेंगे भाई, रहेंगे। ऑल दीज क्वालिटीज विल बी इन दैट। परंतु साक्षात भक्ति श्रवण कीर्तन में किसी की निष्ठा नहीं होती है, किंतु इन गुणों में ही निष्ठा है। और कुछ ऐसे भक्त हैं जो स्वभाव में उद्धत होते हैं, स्वभाव में उद्धत होते हैं, उनमें न मान शून्यता होती है, न दूसरों को मान देते हैं और न किसी से मित्रता रखते हैं, नहीं किसी के प्रति उनकी दया दिखती है, परंतु उनकी साक्षात भक्ति में निष्ठा होती है। ऐसा भी हो सकता है। साधारणतः जिसमें मानस शून्यता इत्यादि गुण दिखते हैं उसे भक्ति निष्ठ समझ लिया जाता है, किंतु जिनमें गुण नहीं दिखते उनमें निष्ठा रहित समझ लिया जाता है। परंतु यह भ्रम है, ऐसा नहीं, भक्ति है। इस विषय में अनभिज्ञ व्यक्ति ही भूल, अभिज्ञ व्यक्ति भूल नहीं करते। अच्छे अच्छे विद्वान भी इसमें भ्रम हो जाता है। कभी कभी उद्धत कोई भक्त है, वो भक्ति के जो अंग है उनके पालन करने में खूब रुचि है, किंतु कुछ उद्धत होते हैं। उद्धत माने कुछ अक्खड़, जैसे बोली से, इधर से। अतः श्रीमद् भागवत वर्णित निश्चिता भक्ति और अनिश्चिता भक्ति के लक्षण के अनुसार में श्रवण कीर्तन आदि में साक्षात भक्ति में जिसकी प्रबल उत्कंठा है उसमें निश्चिता भक्ति समझो, चाहे उसमें मानस शून्य आदि गुण दिखे चाहे न दिखे, चाहे उद्धत भी हो किंतु अपराधी नहीं। उद्धत हो सकता है किंतु अपराधी नहीं। श्रवण कीर्तन आदि साक्षात भक्ति में जिसकी शिथिलता है, जो इसमें प्रबल उत्कंठा रुचि नहीं रखता, उसमें अनिश्चिता भक्ति समझो। अब तुम लोग विचार करो, हमारी भक्ति, अपनी भक्ति, तुम्हारी भक्ति निश्चिता है या अनिश्चिता है? यदि देखो जो अनिश्चिता है तो निश्चिता के लिए तैयार, और यदि निश्चिता है तो रुचि भी वैसी है। हाँ, नौ
देखो दिस निश्चिताभाजन निश्चिताभक्ति इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू टाइम्स। वन इज कॉल्ड साक्षात भक्ति वार्तनी। That means one will have nishtha in following the nine types of devotion like Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaran, Pala, Sevanamachi, Ramana, Nasa, Sakya, Atma, and Vedana. Or he'll have great nishtha in following the five types of bhakti. Savitam, Nam, Kirtan, Bhagavad, Sravana, Madhura, Vahasri, Shabaya, Vrataya, Sevanam. This is the first type of nishtha bhajan. He has faith in following the limbs of bhajan. And the second type of nishtha is called Tad Anukul Vasu Bhattini. That means he has nishtha in following or adopting the qualities that should be present in a devotee. For example, he has nishtha in not the man taking respect for himself. He is steady in giving respect to others. He is fixed and he is friendliness to all the entities, understanding them to be related to Krishna. And he is fixed in giving mercy to others, etc., etc. So two types of nishtha. What is Vishnu Dhirak Pada? What is Vishnu Dhirak qualities of a devotee? Therefore, in the second type of bhajan, type Anukul Vasti Vati Nishtha Bhajan, if you have Nishtha in that, then it will gradually lead to Nishtha in the performance of the nine rings of bhakti. Therefore, this Nishtha can be seen in three types of activities: Gayaki, Vachiki, and Manasi. Gayaki means singing, speaking.
Gayaki, my God.
Oh, no. Gayaki means bodily activities. Vachiki means kirtan. And Manasi means by mind. Therefore, there is no particular sequence in which these three types of bhajan, bodily, vachikali means speakingly, or mind, there is no particular sequence in which this Nishtha will appear, because devotees have different tendencies. Therefore, one devotee who is very strong, he may have Nishtha in Gayaki bhajan. But another devotee whose mind is very strong, he will have Nishtha in Manasik bhajan. Therefore, which devotee has which, in which order they come, there is no particular sequence. It depends on the nature of each devotee. Therefore, there are some devotees who have the second type of devotion. They're very kind to others, they're very merciful, they're very this, they're very that. But they have so much nishtha in the first type of bhajan, the performance of Shravan Kirtan. And there are some devotees which have great nishtha in the performance of Shravan Kirtan, but we see some irregularities in their character. They may be angry, they may not be merciful. Therefore, in that type of devotee who has nishtha in Shravan Kirtan, but no nishtha in the quality of devotion, we should say he has nishtha, because he has nishtha in Shravan Kirtan. Take it. And the second type of devotee who has all the qualities of devotee, but no nishtha in Shravan Kirtan, Vishnu Sadhanam, etc., then we can say, oh, the proper nishtha is not there.
One kirtan, come on. Related to Srimati Radhika. Like she did kirtan, that type.
Thank you.
आप निष्ठा के बाद में जब इतना लय विक्षेप अप्रतिपत्ति रसास्वाद कषाय सब दूर हो गया, अभिरुचि आई। रुचि होने पर चाहे रात भर आदमी नाम करे, नींद नहीं आएगी, थकान मालूम नहीं होगी, उसमें रस मिलेगा, तब समझो ये रुचि आई। उस समय में जब रुचि आएगी तो श्रवण से अधिक कीर्तन में और कीर्तन से अधिक स्मरण में इस प्रकार एक अंग से दूसरे अंग और दूसरे से तीसरे समय विलक्षण भाव में रोचकता आएगी, सब में रोचकता आएगी, रुचि होगी, उस समय में कोई परिश्रम नहीं मालूम होगा। और एक राउंड कर ले, और रुचि के साथ में नाम करता है, उस समय लीलाएं स्मरण होती हैं, इसी का नाम रुचि है। साधु संग श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, इन अवस्थाओं के बाद रुचि की अवस्था में अब श्रवण कीर्तन में लेश मात्र भी परिश्रम नहीं लगता। भक्त जितना ही इनका सेवन करता है उतना ही उत्साह और आसक्ति इन अंगों में बढ़ती चली जाती है। विचार करो, तुम लोग कहाँ हो, हम लोग कहाँ हैं, रुचि आई कि नहीं? वी कैन जज, अभी आई कि नहीं भाई? रुचि के पहले डर रहेगा, जब रुचि आएगा तो डर बहुत कुछ दूर हो जाएगा। फिर सन्यासी गिरेगा नहीं, ब्रह्मचारी गिरेंगे नहीं, फिर विवाह करने की इच्छा नहीं आएगी, विवाह हो गया बस उतना ही, सब दूर हो जाएगा, भोग इत्यादि के प्रति चित्त नहीं जाएगा। श्रवण कीर्तन में भक्त का व्यसन लग जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता है, सो जाएगा तब मुख से अपने आप निकलेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, जब जाग करके उठेगा तो देखेगा जी उसका नाम हो रहा है, उस पर अपना अंकुश नहीं रह जाएगा। जैसे भांग अफीम आदमी खा करके बिना खाए बिना रह नहीं सकता है और उसमें विभोर रहता है, ऐसे ही रुचि होने के बाद में भक्तों का चित्त वैसे ही उनमें परम आसक्ति हो जाती है। जैसे बतला रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, कालक्रम से उस ब्राह्मण बालक को बटु को अर्थों में प्रवेश हो जाता है, बस उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसे कोई परिश्रम नहीं लगता, अन्यासी उसको समझता हुआ चला जाता है, बड़ा उत्साह होता है। वास्तविक सिद्धांत पक्ष में जैसे पित्त दोष से दूषित रसना को मिश्री अरुचिकर लगती है और फिर वही अभ्यास करते 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 फिर मिश्री अच्छी लगेगी, रोग भी दूर हो जाएगा। उसी तरह से पहले रुचि नहीं आती, हरि नाम करते चलो, हरि कथा श्रवण करो, वैष्णव सेवा करो, भागवत सेवा करो, धीरे 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 ये सब दूर हो जाएंगे और रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रुचि दो प्रकार की होती है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिण और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिण। पहली रुचि ठाकुर जी को सजाओ न सजाओ, जैसे भी ठाकुर जी रहेंगे उसको दर्शन करके भाव के साथ में प्रणाम करेगा, स्तव स्तुति करेगा, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि के वैशिष्ट। जैसे कीर्तन में सुस्वर है, अभी हरि कथा में मीठी रूप से मैं कीर्तन करता हूं, तो उसमें रुचि होगी, नहीं तो रुचि नहीं। ठाकुर जी को प्रणाम करने में कब रुचि होगी, लोगों को बुला करके, अभी जैसे सजा दिए गए हैं ठाकुर जी, चलो गौड़िया मठ में ठाकुर जी का दर्शन कराएं, विशेष करके पूर्णिमा के दिन में आएंगे, राधा दामोदर के मंदिर में जाएंगे, पूर्णिमा को सुबल सखा के रूप में उनको सजा देते हैं, लोग जाते हैं लाखों, और न सजाया जाए यहाँ पर, मत कुछ मत सजाओ, ऐसे ठाकुर जी को रख दो, नहीं होगा। और एक थे प्रभुपाद के शिष्य थे, या कौन, बंशीदास बाबा जी, वो छोटे छोटे गौरनीताई थे और उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, उनको कभी कपड़ा पहनाते कभी कपड़ा पहनाते नहीं, कुछ नहीं, भावाविष्ट बने रहते। तो इस तरह से वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी, वस्तु की वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती। हरि कथा हो रही है, वो अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर रूप से बतला रहे हैं, किंतु गान नहीं करते, मीठा वचन नहीं है तो सुनने में रुचि नहीं, और जो अच्छे हैं रुचि हो गई है, वो इन कथाओं को श्रवण करके उसमें रुचि आती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा और पूजन की विशेषता में ही अटल विश्वासमयी होती है ये सब, ये रुचि, उनके साथ किसी सहायक मनपसंद वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखती। बस वस्तु को देखा, महाप्रभु कहीं भी किसी मंदिर में गए, दर्शन किया, भाव में विभोर। जब ऐसी रुचि हो जाए वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित, यदि रुचि हो जाए तो वो कहता है वो भक्त, हो सके कृष्ण नामामृत को त्याग कर किस लिए तू दुष्परिग्रह की योगक्षेम रूपी विषय वार्ता में निमग्न हो रहे, सखे मन तुम ऐसा विषय वासनाओं में क्यों लग रहा है, मैं तुमसे क्या कहूं, मुझे कोटि कोटि बात धिक्कार है, क्योंकि मुख पापाचारी ने गुरुचरणों की कृपा से भगवत भक्ति को इस प्रकार प्राप्त किया जैसे वस्त्र की गांठ में महारत्न बंधा हुआ हो, मैं उसका मर्म नहीं समझा। गुरुजी ने हाय हाय मैं मुझे धिक्कार है, गुरुजी ने हमें एक अमोल रत्न दिया, चिंतामणि से बढ़कर हमारे गांठ में बांध दी, गुरु मंत्र दिया, गायत्री दिया, सबसे अधिक गोपाल मंत्र दिया, काम गायत्री दिया, ये कैसे हैं, महानिधि हैं, चिंतामणि से बेश कीमती, और मैं उसका मर्म न समझ करके कानी कौड़ी के समान इधर उधर भटकता हुआ विषय वासनाओं में घूम रहा हूं, धिक्कार आएगा, कब, जब वैसी रुचि आएगी, अपने को धिक्कार देगा, दूसरे की तरफ देखने को उसको समय नहीं है, वो इस तरह से देगा। और ऐसा स्वजाति स्निग्ध यदि कोई वैष्णव होगा तो प्राण ही अर्पित कर देगा, मैं विषय वासनाओं में घूम रहा हूं, आयु मेरी नष्ट हो रही है, भक्ति के बिना, भक्ति के किसी भी अंग को अंगीकार न कर शक्ति के अभाव का परिचय दे रहा है, भक्ति किंतु मन नहीं लग रहा है मेरा, हमारा जीवन वृथा गया, हाय हाय मैं भी ऐसा और मेरी रचना भी ऐसी होगी जो मिथ्या कटु ग्राम्य वार्ताओं को अमृत की तरह तक चाट रही है और कभी भगवान की कथाओं में लग जाएगी। अभी हमारी कथाएं, हमारा मन कहां लगता है, विषय वासनाओं की बातों में, हाय मुझे धिक्कार है, ऐसी ही रुचि मेरी भगवान की लीला कथाओं में क्या लगेगी, ओह भगवत कथा सुनने में मुझे नींद आती है, और उसी समय कोई ग्राम्य वार्ता हो लड़ाई हो गई, वहां पर डकैती चल गई, बस नींद खुल जाती है और भगवान की बातें सुनते सुनते नींद आ जाती है। आई हैव सीन दैट दोज़ हू आर हियरिंग हरि कथा समटाइम्स दे स्लीप, बट इफ एनी ग्राम्य वार्ता ओ ओ व्हाट 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 वी कैन व्हाट वी कैन No? Or drama. Oh, drama. Drama is ready. Or drama should be ready. Or ऐसे कान उठा करके उनको सुनता हूं विषय वासनाओं को, धिक्कार है मुझे। साधु समाज में हमको लोग कहते हैं कि साधु हो गया और यही करता है मन से, मुझे धिक्कार है। लोग कहते हैं क्या है, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म में विचरण करते हैं और धिक्कार है मुझे। उदरपूर्ति के लिए मैंने बूढ़े होकर के भी कौन सा दुष्कर्म है जिसको नहीं किया, उदरपूर्ति के लिए इनका भोगने के लिए मुझे किसी नरक का ठीका लेना पड़ेगा, इस प्रकार निर्वेद ग्रस्त होकर के किसी दिन इस पृथ्वी तल पर मोहोपनिषद कल्पलता के फल के सारीभूत भगवान के चरितामृत को सारांश की तरह बार बार आस्वादन और अभिनंदन करता हुआ सब विषय वार्ताओं को छोड़ देता है। एक दिन ऐसा आएगा ऐसे करते करते सचमुच में भगवान की कथाओं में अमृत जैसा आस्वादन होने लग जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। भक्त जनों के भजनानंद रूप नित्य के अध्याय का अध्ययन करने के लिए रुचि रूपी नर्तकी उसके दोनों हाथों को पकड़ करके शिक्षा देने लगती है। क्या तात्पर्य, रुचि उसे नाच सिखाती है, भगवान के श्रवण कीर्तन में चित्त उसका नृत्य कर उठता है, समय समय पर भाव और प्रेम रूप नटाचार्य उसको नचाने लगते हैं, उसकी सीमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से मन ही मन में ये सब भावनाएं करता है। हम लोगों को भी ऐसा देखो जे कहां तुम्हारा मन है, ऐसे कभी घृणा आती है या नहीं आती, ऐसा रसा स्वाद आता है कि नहीं, और ट्राई टू डू लाइक दैट, ट्राई टू फॉलो एज विश्वनाथ चक्रवर्ती हैज टोल्ड। चलो और नाटक अभिनय आरंभ कर सकते हैं, यू कैन रेडी फॉर ड्रामा प्ले।
Hello. So, finally, when the five obstacles of Loi, Vichet, Rasaswad, Prasad, etc. are dissipated, and they cannot hinder the body anymore, that time comes Ruchi. At that time, one can chant the holy name all night and feel no desire to take rest. He'll drink the nectar of the holy name. He'll experience many hours spent in Charan Kirtan to be like a second. There will be no difficulty for him at all. And he will engage the mind in thinking of the pastimes of the Lord. That time there will be no fear. At that stage, there's no question of a sannyasi or brahmachari marrying or falling down at the stage of Ruchi. At that time, just like an alcoholic or a drug addict, becomes restless if he cannot attain his intoxication. In the same way, a devotee in the stage of Ruchi will experience that type of attraction towards Shraddha, Kirtan, and Vishnu Smaranam. He will need no ankush, no prodding to perform bhajan. He will have so much ashakti, so much attachment for this process, and he will have so much enthusiasm. Just like Sri Guru Goswami said, When one is afflicted by jaundice, one cannot taste the sweetness of sugar candy. In the same way, when one's disease is diminished, one can experience the nectar inherent in Shravana Kirtan. That ruchi is of two types, Vastu Vaishishta Apeksha and Vastu Vaishishta Apeksha.
Anapekshani Pekshani.
Vaishnava Vaishishta Apekshani, Vastu Vaishishta
Anapekshani.
The first type of ruchi depends on the super excellence of the ingredients. And the second type of Vishnu does not depend upon the super excellence of the ingredients. For example, in the Gaudiya Mathia we have so nice decoration of Thakurji. Therefore, the ordinary persons, chalo, let's go to the Gaudiya Mathia. Very wonderful Thakurji is there. Or when Sri Radha Damodar performed their special Srinagar, the special decoration of Krishna, decorated as Sham Sakhi or as Subal. That time, how many people ran towards Thakurji? Yes, very nice. But this is the ordinary type of ruchi, but still good. Or we should try to become like Sri Bhakti Das Babaji Maharaj. He had the second type of ruchi, which is called Vastu Vaishishta Nirapekshani. Anapekshani. Bhakti Das Babaji Maharaj, he had some little faculty. Sometimes he never dressed them, sometimes he could not feed them, sometimes he would fight with them. Therefore, his ruchi was not dependent upon the nice dress of the Lord, the nice prasadam that was offered. Therefore, he had Vastu Vaishishta Nirapekshani.
Anapekshani.
Then, for example, sometimes there is a nice kirtan singer, or the Hari Gita, the person who speaks Hari Gita, he sings very nicely in the middle. Then everyone has so much taste in them. But if that devotee sometimes speaks very harsh words or his language is not sweet, we will not have taste in that type of Hari Gita. But Chaitanya Mahaprabhu was not like that. Any temple he went to and he saw any Thakurji at any stage, he would become absorbed in Bhava. Therefore, at the stage of ruchi, the devotee will lament, "Oh, my stupid mind, why you always consider his material sense gratification? Alas, Gurudev gave me a jewel, but I foolishly neglected it, keeping it tied in a knot in the corner of my dhoti. I forgot about it. What is that jewel given by Gurudev? That is the Maha Mantra, the Guru Mantra, especially the Gopal Mantra. But alas, Dikar, fire me. I wasted my time not developing ruchi and these things, but I never lost time in criticizing others. In the state of ruchi, when that devotee finds Swajatiya Sarishtigda, when he gets a chance to associate with a devotee who is more advanced than him, or in the same line as him, and affectionately disposed towards oneself, a devotee in the state of ruchi can give his life for that devotee, for his seva. But the devotee will lament constantly, thinking, "Alas, as soon as I get a chance to hear the name, form, qualities and pastimes of Radha Krishna, I fell asleep. But as soon as I heard some Grammy guitar, I licked it up like nectar. That Grammy guitar, discussing others' faults, appeared like nectar to me." And the Guru Maharaj says, hearing Hari guitar when we sleep, but if someone's committing some robbery out there, we, "Oh, what happened? How, which, where, when, and why?" Therefore, that devotee will lament, "Alas, what type of brahmachari or sannyasi am I? A brahmachari is meant to always have the supreme Brahma in his heart, but I am not like that. I wasted my life. I spent my life engaged in useless activities and sinful works. Therefore, I do not know how long I will spend in hell. Alas, fire me. The devotee will repent like this. When? In the stage of Nishtha. Ruchi. Therefore, Guru Maharaj said we should take our pulse. Are we thinking like this? I don't know. Therefore, hearing, the Bhagavatam, the devotee will think, "The Srimad Bhagavatam is like a wish-fulfilling jewel. He can give me anything. Therefore, by hearing constantly, one's anatta is removed. And that time Srimad Bhagavatam will appear to be like nectar. At that time when he gets a chance to hear Hari Katha or chant the name, he'll dance in ecstasy and he'll catch the hands of the devotees weeping. At that time no one can describe the happiness that he experiences in performing the limbs of bhajan.
Thank you. Krishna. कल क्या कल के प्रोग्राम की रे कल गोपाष्टमी है गोपाष्टमी कृष्ण गोचारण के लिए उसी दिन में गए थे इसलिए हम लोग प्रति बार गोपाष्टमी में नंदगांव में रहते हैं और वहां पर उद्धव क्यारी और ललिता कुंड
पहले प्रेम सरोवर साकेत
प्रेम सरोवर साकेत
उद्धव क्यारी
उद्धव क्यारी नंद बैठक ललिता कुंड नंद भवन
नंद भवन
और फिर
पावन सरोवर
पान सरोवर
चरण पहाड़ी
वाह चरण पहाड़ी
तेर कदम
तेर कदम
आशीषेश्वर महादेव
आशीषेश्वर महादेव और फिर लौट आए प्रसाद की व्यवस्था होगी डरना मत तुम्हारो गोपाष्टमी एट नंदगांव प्रेम सरोवर शाके देन उद्धव क्यारी ललिता कुंड नंद बैठक एंड आफ्टर दैट विल गो टू नंद भवन जशोदा मैया नंद बाबा कृष्ण कन्हैया दाऊ जी ऑल विल बी देयर And then we will go to Pavan Sarovar and then Kadambate, Rup Goswami Bhajan Sthali and return back.
Hare Krishna.
Hare Krishna. All the devotees who have come on the last few days, please register yourself properly at the table there with Tilakashguru. Tomorrow we will go by buses again. Please look outside of the list in which bus you are. And the bodies who were from the beginning there to help only to the bosses, please again help with this so that there will be not too much disturbance. Those who don't have tickets, we will also try to accommodate you with buses, but you have to be a little patient. By the end, when there is places free, we will also arrange for you. And those who have been involved in finding a video camera, please bring that camera to either Srimad Padmaparas or myself. One devotee is very worried. He left his video camera 3 days ago in the temple room, and whoever has discovered or found it or taken it, please return this. Thank you.
Jai Yashodananda Krishna Gopala.